ओम शांति। आज हम सभी अपने सुबह के सत्र में बहुत सुंदर क्लास लेने वाले हैं। आदरणीय भ्राता भारत भूषण भाई जी से, तो जो भी भाई बहने बाहर बगीचे में, अपने रूम्स में, इस हॉल से बाहर हैं, उन सभी से विशेष अनुरोध है, सभी जल्दी से जल्दी इस हॉल में पहुंचें और इस क्लास का बहुत सुंदर, जो उनके अनुभवों से सुसज्जित है, इस क्लास का फायदा लें। आज का टॉपिक बहुत सुंदर है, बाप समान बनने का पुरुषार्थ। हम सभी के पारलौकिक और अलौकिक पिता, जो विदेही, विचित्र, अव्यक्त, अशरीरी हैं, उनके जैसा हम कैसे बने। हमारे सामने विराजमान हैं भ्राता जी, जो इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लगभग 50 देशों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, कनाडा इत्यादि। आप ज्ञान मानसरोवर एकेडमी पानीपत के डायरेक्टर भी हैं, बहुत सुंदर विधिवत रूप से वहां के कार्यक्रम चलते रहते हैं, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, भट्टियां इत्यादि। भारत के हर कोने से भाई बहने वहां पहुंचते हैं ज्ञान योग की बहुत सुंदर अनुभूतियों के लिए। आप साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। पानीपत सर्कल में 55 सेंटर्स, 500 गीता पाठशालाओं के आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, जो ये सभी शाखाएं आपकी देखरेख में चल रही हैं। आप दादी जानकी पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर सोसाइटी पानीपत के प्रेसिडेंट भी हैं। 1985 की युवा पदयात्रा अमृतसर से दिल्ली तक जो चली थी, आप उसके कीनोट स्पीकर भी रहे। आप कई कोर्सेज के माध्यम से संबंध संपर्क में आने वाले, ज्ञान में रुचि रखने वाले भाई बहनों को बाबा के अनन्य वारिस बना चुके हैं। आप उन्हें सामने बैठा हुआ देख रहे होंगे, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और बहुत ही बाबा से प्यार, जिनके चेहरे से, जिनके नयनों से हम सभी को वो झलक दिखाई पड़ रही है। आपने चंद्रमणि दादी जी, मनोहर दादी जी, मिठू दादी जी और कई सीनियर दीदियों जी के, दीदियों के सानिध्य में रहते हुए इस ज्ञान की पालना लेते हुए अपने जीवन को सेवाओं के योग्य बनाया और अनेकों के जीवन को गुलाब के फूल की तरह महकता हुआ बनाया। तो जिन्हों के जीवन को भी आपने इतना सुंदर बनाया, उनके दिल की दुआएं आपकी खुशी को और भी अधिक बढ़ा रही है। तो हम आदरणीय भ्राता जी से अभी बहुत सुंदर विषय के बारे में, जो अपने अनुभवों से युक्त हम सभी को सुनाने जा रहे हैं, बाप समान बनने का पुरुषार्थ, आदरणीय भाई जी, ओम शांति।
ओम शांति। अक्सर अव्यक्त महावाक्यों में बाबा बार बार ये हम बच्चों को रिमाइंड कराते हैं कि बच्चों से बाबा की क्या आशा है, कौन सी आशा है। एकमात्र आशा है तो उसमें यही आता है कि बाप समान स्थिति बन जाए। बाप समान स्थिति कैसे बने, उस पे बाबा हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाते हैं। तो और बाबा ये भी कहते हैं, बच्चों के मन में भी यही एक लक्ष्य है, बस अब बाप समान बनना है, बाप समान बनना है। कभी कभी बाबा कहते हैं, तुम्हारी चलन और चेहरा बाबा को प्रत्यक्ष कर दे। बाबा कहते हैं, अभी तक बच्चे ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारी तो प्रत्यक्ष हो गई है, जहां तहां ब्रह्मा कुमारी प्रत्यक्ष हो गई है। हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष किसको करना है, बाबा को करना है ना, वहां तक और पहुंचना है। एक बार बाबा रामदेव जी के मित्र थे, मुख्यमंत्री दिल्ली, और उनका ड्राइवर जो था वो बीके भाई था, बाबा का बच्चा था। तो दिन में 10 जगह प्रोग्राम वो दोनों इकट्ठे जहां गए, तो नेचुरल है कार में जो मुख्य होते हैं वो ड्राइवर्स का भी ध्यान रखते हैं कि भाई हम तो खा रहे हैं, जलपान कर रहे हैं, ड्राइवर को भी देखा जाए। पर वो जहां जाते थे वो उन्हें जब कहते थे, कहते नहीं, एकदम खुद वो मुख्यमंत्री कह देते ये ब्रह्मा कुमार है, ये कहीं कुछ नहीं खाएगा। सारा दिन उन्होंने बहुत कोशिश की, उसे कहा लेकिन कुछ नहीं खाया, ये कुछ नहीं खाएगा। एक सभा में फिर मुझे बताया गया कि बाबा रामदेव जी ने बोला, जिस संस्था का एक ड्राइवर भी इतना नियमों का पक्का है, वो संस्था कहां पहुंची हुई होगी, जरा सोच। दुनिया देख के ताजुब खा जाती है। इनके छोटे छोटे भी भाई बहन वो भी इतने मजबूत हैं अपने नियमों में, तो कितनी बड़ी बात है जो हमें नियम मिले हुए हैं, खान पान शुद्धि, पवित्रता और सब कुछ। कोई अगर आपको ये कह दे कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, तुम ये पवित्रता छोड़ो, विकारी जीवन अपना लो, खान पान, कौन कौन तैयार होंगे बताओ? एक भी नहीं ना। हाँ, ठुकरा देंगे ना उस पद को भी, ठुकरा देंगे। हाँ, कौन ठुकरा देंगे? अब वो हाथ खड़ा करो, सभी है ना। इससे ज्यादा मजबूत कौन होगा? बाबा के बच्चों के लिए कितना सम्मान पवित्रता का, कितना उनके अंदर भावना, इन नियमों के प्रति कितने समर्पणता है, सोचिए। और ऐसा नहीं वो नहीं समझते, वो सब समझते हैं। चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर शायद अब भी हैं, लेकिन उस वक्त एक ही था आंध्र प्रदेश, वहां से आए हैदराबाद से और सब देखा। पहले दिन एक बहन ने सुनाया ज्ञान सरोवर में, तो सोचा यही इनकी टॉप होगी, बहुत ऊंची, इतना बढ़िया सुनाया। दूसरे दिन शीलू बहन जी आए, कहते ये होगी सबसे टॉप। तीसरे दिन फिर उषा बहन जी आए, कहते ये है सबसे टॉप। फिर सूरज भाई से मिले, उसने तो पूरा ही पहुंचा दिया। फिर वो देखें हद हो गई, यहां तो सारे ही। हाँ, और फिर वो लिफ्ट में जा रहे थे, वो सिक्योरिटी मैन भी, वो भी पहले दृष्टि दे रहा था उन्हें, वो भी चाह रहा था कि पता नहीं आज कहां पहुंचा दो। तो वो साईं बाबा को भी फॉलो करते थे, साईं बाबा ने उनको फोन किया जो वापस पहुंचे, नायडू आई केम टू नो यू वेंट टू ब्रह्मा कुमारीज के पास, आप गए, क्या डिफरेंस देखा? उनसे किसी ने पूछा, मुझे बताया उन्होंने साईं, उन्होंने कहा ओनली वन थिंग, कि व्हाट यू आर इंडिविजुअल एंड दैट इज एन इंस्टीट्यूशन, आप एक हैं और वहां ऐसी संस्था तैयार कर दी गई, वहां का किचन मास्टर भी इतना होशियार है, सूरज भाई के लिए बोला, वो भी पूरा पहुंचा देता है भगवान के पास। दुनिया को यहां देख के हैरानगी होती है ना। बाबा गया, सोचा था कि बस कितना चारों ओर फैला दिया था, अब ये संस्था गई के गई, गई के गई, जाने वाली थोड़ी थी। हाँ, देखा ये तो और ज्यादा बढ़ गई, दादियां और सब वो। अब फिर सारी दादियां एक एक करके, वो भी अब दादी युग भी पूरा हो गया, वैसे तो हमारे साथ हैं बाबा भी दादियां भी साकार में, परंतु कार्य बाबा का आगे से आगे वरदान है। आज बाबा ने नहीं कहा तुम्हारी खूब वृद्धि हो जाएगी, लाखों ब्राह्मण बन जाएंगे, तो बनते जाएंगे। ये कार्य उनको गुप्त शक्ति का तो पता नहीं कि शिव बाबा का कार्य संपन्न होना है, सारे विश्व का उद्धार होना है। 33 करोड़ तो देवी देवताएं चुनने ही हैं बाबा ने, तो कितना तेज स्पीड से कार्य चलता जाना है, भले विघ्न आए कुछ आए, लेकिन रुकने वाला नहीं है काफला। तो बाबा ने पर ये कहा कि बच्चे ब्रह्मा कुमारी तो प्रत्यक्ष हुई है, हाँ सब कहते हैं ब्रह्मा कुमारी, कई बार कितने वीआईपीज मिलते हैं कहते हैं चरित्र देखना हो तो ब्रह्मा कुमारी संस्था, और कोई संस्था कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक है मानते हैं, पहले मिथ्या एक फैलाते थे कि भाई बहन बनाते हैं भाई बहन, अरे भाई कोई मशीन थोड़ी लगी हुई है, निकालते जाओ भाई बहन बनाते जाओ, पर उनको इतना पवित्र कर देते हैं, उनके मन को इतना पवित्र, जो भाई बहन की पवित्रता जैसे होती है, तो ये कोई छोटी बात है, दुनिया के लिए तो बहुत बड़ी चीज है ना। इसलिए ऐसा चरित्रवान बनाना, तो ये है प्यारे बाबा का काम। इसलिए बाप समान स्थिति बने, बाबा कहते प्रत्यक्षता क्यों रुकी हुई है, क्योंकि बच्चे अभी कुछ कमी कमजोरी रही हुई है, उसको खत्म कर दो तो आज ये डंका बन जाए चारों ओर बाबा का, प्रत्यक्षता हो जाए। हाँ तो इसलिए उसके लिए क्या करना है, हम सबको बाप समान स्थिति बनानी है। उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, बाबा ने कहा था ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रखते चलो, ब्रह्मा बाप समान स्थिति बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम, कदम पे कदम। तो हम देखें हमारे कितने कदम ब्रह्मा बाप समान हैं, उस चीज को जरा सोचें। तो बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि तीन शब्द बाबा के याद रखने हैं ना, तीन तीन। पहला था त्याग तपस्या सेवा, बाबा का ला कितना त्यागी बाबा देखो, एकदम सर्वस्व त्याग कर दिया ना, सब कुछ न्योछावर कर दिया, अलफ को मिला अल्लाह, बे बादशाही आई तार अलफ की, हुआ रेल का राई। अरे उस वक्त तो संस्था भी नहीं थी, अभी तो 10 लाख 15 लाख 12 लाख भाई बहने हैं, कितने डॉक्टर कितने इंजीनियर कितने पॉलिटिशियन बाबा के बच्चे बने हुए हैं, सोचिए अब क्या बड़ी बात है। निश्चय वो था जब कुछ भी नहीं था सामने और बाबा ने सर्वस्व बलिहार कर दिया, कितना बड़ा त्याग था। ब्रह्मा बाबा का जो लौकिक बेटे थे नारायण, मैं बंबई सेवा करके वापस आ रहा था तो वो भी बंबई से मधुबन आ रहे थे, एक ही कैबिन में थे हम ट्रेन में, तो मैंने कहा नारायण दादा जब बाबा ने सारी इतनी अपार संपत्ति, उस वक्त के लाखों तो आज के अरबों के बराबर हैं, इतनी अपार संपत्ति फाइनल कर लिया कि शिव बाबा के ऊपर अर्पण करनी है, तो आपको रिश्तेदारों ने और उन्होंने भड़काया नहीं कि भाई आपका बाप तो पागल हो गया, देखो क्या कर रहा है सारा कुछ। हाँ उसमें ओम मंडली में न्योछावर कर, ओम मंडली था तब तो ना। उसने कहा बहुत भड़काया, बहुत कहा लोगों ने, बहुत कहा, परंतु हमें इतना विश्वास अगाध अपने बाबा में था, लौकिक में भी, कि एक संकल्प नहीं आया। हमने हम एक ही बात कहते थे, बाबा जो कर रहा है ना बिल्कुल ठीक कर रहा है, बाबा जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, और कौन इतना त्यागी होगा अपनी सारी संपत्ति बाबा के ऊपर लगा दे और लौकिक को भी ना देवे। आप बाबा का त्याग तो देखिए, बहुत गुरु लोग आए, उन्होंने तन अर्पण किया होगा, मन अर्पण किया होगा, पर धन का तो बड़े बड़े अखाड़े बन के उनके नाम भले प्रॉपर्टी हुई है, पर धन भी अर्पण किया हो वो ब्रह्मा बाबा जैसा कोई एग्जाम्पल ना हुआ है ना होगा। जो 14 साल तो बाबा की उस अपार संपत्ति से ही कितना काम चलता रहा। तो हम चेक करें बाप समान हमारी स्थिति है, कहने को तो हम भी कह देते हैं बाबा की तरह, बाबा जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए, क्या लागत है मेरा, प्रैक्टिकली क्या है। बाबा जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए, दिल धड़कत है मेरा। सौंपू या ना सौंपू, और भी कोई सौंप रहा है, देखते हैं क्लास में और भी कोई सौंप रहा है। हाँ तो ये बाबा के ऊपर हरेक की समर्पणता नंबरवार है ना, कितना बड़ा महायज्ञ चल रहा है सोचो। एक भी सभा में ये अनाउंस नहीं किया जाता ना, यही तो संस्था की विशेषता है। प्यार खूब बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, क्लासेज बढ़ती, खूब पालना पूरी होती है, लेकिन एक भी कभी कर लो भाई दान, खुले दिल से कर लो, कभी कहा किसी ने? नहीं ना। और करने वाले क्या क्या कर जाते हैं, करने वाले क्या क्या कर जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। जितना खुले दिल से बाबा की यहां पालना मिलती है, उतने खुले दिल से बाबा के कार्य में न्योछावर करते हैं। तो ये देखो, ये है ना कमाल। खुद जिसे कहते हैं बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, यहां का काम कैसे चलता है बिन मांगे मोती, अपना आप ही मोती बरसते रहते हैं। तो प्यारे बाबा का जो है बाप समान त्याग, तपस्या देखनी हो, ब्रह्मा बाबा जैसा तपस्वी कौन मिलेगा। कमाल थी बाबा की तपस्या की, बाबा की दृष्टि लेते लेते ध्यान में चले जाते थे, इतनी हाई स्टेज थी। अब हम चेक करें स्वयं को, हमारी तपस्या की इतनी ऊंची स्थिति है? तप से ही तो जीवन निखरता है। तो बाबा ने खुद खूब घोर तपस्या की, भले कोई ऐसा नहीं कि 12-12 घंटा बाबा बैठा, परंतु ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं बैठा, कर्म योगी तो रहा, लेकिन सुबह भी खास बाबा 2:30 बजे झांक के बच्चे देखते थे बाबा के कमरे में, 2:30 बजे बाबा उठा और इतना लाइट हाउस माइट हाउस बन के बैठा है, सारे विश्व को सकाश दे रहा है। तो कितना, कभी कभी मैं सोचता हूं कि जबकि ड्रामा में पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो गई, किसी स्टूडेंट को पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए कि आप फर्स्ट हो ड्रामा में, आपने फर्स्ट बनना है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए फिर पुरुषार्थ करने का दिल नहीं करता, मैंने फर्स्ट तो आना ही है, मेरा ही नोंद है। फिर व्यक्ति पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन मम्मा बाबा केवल दो ऐसी आत्माएं निमित्त, जिनको कहेंगे भगवान के समान जिनकी स्टेज, कि उनको रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गई, आप सृष्टि की नंबर 1 श्री नारायण या श्री लक्ष्मी बनने वाले हैं, उसके बावजूद भी वो पुरुषार्थ इतना टॉप पे था। तो किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा जब आपने बनना ही है श्री लक्ष्मी, चाहे आप पुरुषार्थ करो ना करो, काहे को 2 बजे उठ के इतना तपस्या करती हो, चाहे 4 करो, बनना तो आपने ही है, चाहे ये करो, थोड़ा करो, कम करो, पुरुषार्थ बनना आपने। मम्मा का कितना सुंदर जवाब था, जैसे मेरा श्री लक्ष्मी बनना फिक्स है, ऐसे ही मेरा श्री लक्ष्मी बनने का जो पुरुषार्थ है वो भी फिक्स है। तो कोई ये नहीं कि मुझे 2 बजे उठना पड़ता है, मुझे उठे बिना नहीं रहा जाता, ये नहीं कि मुझे योग लगाना पड़ता है, मुझे बाबा के सिवाय बुद्धि में कुछ आता ही नहीं है, बुद्धि एकदम अटैच हो जाती है। दादी चंद्रमणि के 20 साल अंग संग रहे, बहुत पालना ली, कितना मैंने उनसे शेयरिंग करता था घड़ी घड़ी में, और दादी क्या क्या जवाब देती थी। शेरे पंजाब थी दादी, हमारे पंजाब की शेरनी, बाबा उन्हें शेरे पंजाब कहते थे, बजाओ उनके लिए जितनी तालियां। मैं तो उनको कभी भूल नहीं सकता, हर सप्ताह उनका कोई ना कोई चरित्र, उससे भी पहले 2-3 दिन में कोई ना कोई बात ऐसी याद आती है। तो मनाली में भट्टी थी, मुख्य भाई बुलाए थे, अमीचंद भ्राता जी भी थे, हम भी थे, 5-7-8-10 ज्यादा नहीं, 10-12 के। 3 दिन भट्टी करा के दादी ने सबसे योग का अनुभव पूछा, योग में क्या अनुभव, योग में सबका पूछ के फिर मैंने कहा, दादी हम दीदी बोलते थे सब, दीदी आज आप भी अपना अनुभव सुनाओ योग में, क्या आपको अनुभव होता। दीदी ने कहा कुछ टाइम तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ता था शुरू में योग लगाने का, अब ऐसी स्टेज आ गई है, अब बुद्धि हटती नहीं, बाबा के साथ हर वक्त ही लगी हुई है। हर वक्त जैसे मैं उसकी किरणों के नीचे हूं, आपको लगेगा बात सुन रही है, बात कर रही है, ये कर रही है, हंस रही है, खाना खा रही है, पर ऑटोमेटिकली जैसे मैग्नेट ने खींच के अपने पास बिठाया हुआ है और उसकी किरणें मेरे पे पड़ रही हैं। याद करने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, स्वतः ही हर वक्त याद रहती है। क्या स्टेज थी देखो, हम करनाल करण भूमि कहलाते हैं। मनोहर दादी के द्वारा करनाल की स्थापना हुई, पानीपत सेंटर भी उन्हीं के द्वारा स्थापन हुआ। तो मनोहर दादी अनुभव सुनाती थी कि संडे को भट्टी रखते थे ना 10 से 12, उस वक्त तो ना म्यूजिक होता था ना कुछ, इतने गीत होते थे, 2-4 ये फिल्मी के गीत होते थे, पर चुपचाप बैठते थे इतने पर ऊंची स्थिति में, सब पहुंच जाते थे और 12 बजे के बाद व्हाइट लाइट होती फिर, पर नशे में सब बैठे ही रहते थे, कोई उठता नहीं था। फिर मैं 5 मिनट बाद बोलती, योग पूरा हो गया है अब नीचे आ जाओ, थोड़ा सा वो होते लेकिन फिर भी किसी की दिल नहीं होती थी बोलूं, इतना कुछ वाचा में आऊं या कुछ और, इतना नशा चढ़ा होता था वो परम धाम की किरणों में बाबा के नीचे में। फिर 5 मिनट बाद कहती, योग पूरा हो गया है अब नीचे आ जाओ। एक वो टाइम था जब नीचे उतारा जाता था, इतने चढ़ जाते थे, और आज क्या टाइम है। एक दीदी कहीं कमेंट्री कर रही थी, अब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ के जा रही हूं और वतन में पहुंच गई हूं, अब परम धाम में किरणों के नीचे, आहा हा कितना शक्तिशाली अनुभव हो रहा है। फिर उसके बाद अब मैं आत्मा वापस आ रही हूं, पुनः शरीर में प्रवेश कर गई। एक बीके भाई था वीआईपी, वो खड़ा होके कहा, दीदी आप तो होके वापस भी आ गई हो और मैं तो इतना जोर लगाती रही आत्मा, इतना लगाती रही, लिकड़ लिकड़ लिकड़ी ही नहीं वो ताली बजा रहे हैं इसलिए कि निकली नहीं उसकी आत्मा आज पुरुषार्थियों की ये स्टेज है और वो टाइम था नीचे उतारा जाता था, इतने वारिस बच्चे होते थे। अब तो कहीं तो योग समझ ही नहीं पाते, गीत चलाते हैं, सोचते हैं गीत सुन रहे हैं यही योग है, कोई कुछ और, ठीक है लाल लाइट में बैठे रहते हैं। कि पूरा अच्छा अनुभव करें बाबा के साथ का है। अभी भी बहुत ऐसे कोई कोई बच्चे बाबा के प्यार में भी डूब जाते हैं। तो ऐसी हम ऊंची स्थिति, त्याग तपस्या और सेवा, सेवा में बाबा ने सब कुछ समर्पण कर दिया। कितनी बाबा की विश्व कल्याणकारी स्थिति होती थी सोचो, सारे विश्व को सुकाश देना है। बाबा के सामने बच्चे कोई खड़े होते थे और बाबा बाबा के, देखो मेरे वो अमृतसर के बच्चे, देखो बच्चे मेरे वो कानपुर के बच्चे, देखो बच्चे बॉम्बे विलायत के बच्चे। बाबा की बुद्धि पता नहीं क्या, सारे विश्व को जैसे देख रही हो, सकाश दे रही हो। एक बार मनोहर दादी ने सुनाया कि पांडव भवन में कोई प्रदर्शनी कहीं लगनी थी, तो जितने पहले ही 20-1 रहते थे, ज्यादा तो थे ही नहीं, 20-30-40 बस इतने होंगे, ज्यादा 30-40। बाबा क्योंकि किसी को बैठने नहीं देता था, जाओ बच्चे वहां सेवा पे जाओ, वहां जाओ, सेवा का कार्य बढ़ाना था। तो कहती है प्रदर्शनी पे गए थे, पीछे बहुत थोड़े थे, मुश्किल से 5-7 बच्चे 8। तो बाबा की जब मुरली चली उस दिन, तो मुरली उस वक्त तो वो होता नहीं था मोबाइल या कुछ और क्या चल रही है, आने के बाद वो दूसरे दिन तीसरे दिन मिस नहीं करते थे, उस मुरली को सुनते थे जब वापस आए। तो बाबा की मुरली इतनी पावरफुल चली, इतनी पावरफुल चली। कहती मैंने बाबा को कहा, बाबा आप जो है सारे जब एब्सेंट थे उस वक्त इतनी पावरफुल मुरली चलाई आपने बाबा, केवल 4-5-7 बच्चों के सामने। तो बाबा का क्या जवाब था, बाबा ने कहा बच्ची बाबा जब मुरली सुनाता है तो इन बच्चों को थोड़ी देखता है सामने, सारे विश्व बाबा के सामने होता है, विश्व को देख के बाबा की मुरली चल रही है। तभी आप देखना साकार मुरली चली कब की हुई है, कोई 50-60-70 की मुरलियां 70 में तो हो गए थे व्यक्त, साकार मुरली जो है कितनी पुरानी चली हुई है, लेकिन आज भी आपको लगे कमाल है, ये तो बाबा आज की परिस्थिति पे बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जैसे आज की। कैसे बाबा दूर दृष्टि और उस स्थिति, अभी कुछ दिन पहले बच्चे लड़ाई लगेगी, थोड़ा रुकेगी, फिर लगेगी, फिर एकदम बच्चे देखना मां भारी मां भारत युद्ध हो जाएगा। तो बच्चे वो, क्योंकि ये साइंस के साधन तो इसीलिए बने ना बच्चे हैं, ये बाबा के मददगार नई दुनिया की स्थापना में हैं। तो आप सोचें हमारा बाबा किस तरीके से हमें भी विश्व कल्याण के इस प्लेटफॉर्म पे रहता था। हम हद में तो नहीं रहते क्या? हम हर वक्त बेहद में रहते हैं, बेहद की प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। फिर बाबा मैं बाप समान बनने के लिए पहला चीज बताई मैंने, त्याग तपस्या सेवा। सेकंड है बाप समान स्थिति बनानी है, सादा जीवन उच्च विचार। बाबा की सादगी देखने वाली है, क्या कमाल की है ने? और फॉलो किसको करते हैं? हम सब बाबा को जो देखा सबने फॉलो उसी को करेंगे ना। कितना बाबा सिंपल रहता था देखो। आज कई हैं बड़े बड़े महा, मतलब बहुत उच्च पदों पे, धार्मिक पदों पे, लेकिन आप देखना उनका भवका भी कितना है, कितना उनका पहन सहन और सब। और जब आते हैं तो भोपू बजते हैं। बाबा चाहता तो बाबा भी खूब हाँ महामहिम पिता श्री ब्रह्मा आ रहे हैं, छह नगाड़े इधर से बजते, छह इधर से बजते, तों तों करके कितना पंप एंड शो कर सकते थे। लेकिन कितना सादगी बताओ बाबा, कितना सिंपल। आप जाते ऊपर पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में देखो गद्दी, अब तो बड़े अच्छे अच्छे सोफा लगे हुए हैं स्टेज पे। बाबा के पीछे स्पॉट भी नहीं होती थी, 93 ईयर तक बाबा ने कोई कंधे की स्पॉट नहीं ली, कोई ऐनक नहीं पहनी, और निरंतर तपस्या, डेढ़ डेढ़ घंटा भी बैठना, ये क्या कमाल नहीं थी बाबा की? सादा जीवन उच्च विचार, कितनी सादगी, विचार कितने ऊंचे और सादगी कितनी थी। सोचो जब नए कमरे बने वहां ट्रेनिंग सेंटर आदि और जो भी पांडव भवन में, तो बाबा को कहा बाबा एक सबसे अच्छा कमरा आपका बन। बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्चे, बाबा तो इस पुराने कमरे में ही रहेगा, ये बच्चों के लिए है, बाबा नहीं रहेगा। बाबा ने स्वीकार नहीं किया। देखो कितनी बड़ी बात है, कितना सादगी में बाबा रहा, कितना सादगी में रहा, बच्चों के साथ बैठ जाना। मैंने दादी को पूछा एक बार, चंद्रमणि दादी को, मैं कहा दादी दीदी बाबा को कहते हैं कि कभी बच्चों के साथ अनाज साफ करने लग जाता था, कभी चाय लेके केतली खड़ा हो जाता, आओ बच्चे बाबा चाय पिलाएगा, चाय पिलाने लग जाता था, कभी कुछ करता था। तो दीदी मतलब कभी आपने ऐसे, ये तो नहीं कोई कर्म का त्याग किया हो? बैडमिंटन भी खेलता था और पर्वत पे भी ले जाता था। तो दीदी कभी आपने ऐसा भी देखा कि आज बाबा कर्म करते करते थोड़ा नीचे आ गया है? दीदी ने कहा ये कमाल थी, कभी नहीं देखा, हर वक्त बाबा जैसे उस नशे में चूर और ऊंची स्थिति, उसके पास बैठते हम भी उड़ जाते थे, जो भी आता था वो भी उड़ जाता था। ये था बाबा का कमाल, अंदर की स्थिति कितनी ऊंची। कुंज दादी ने एक बार सुनाया कि उस वक्त वहां रहते थे ब्रिज कोठी में, तो मम्मा बाबा शायद पता नहीं कुछ अनाज सफाई कर रहे थे या कुछ सब्जियां काट रहे थे, तो कोर्स जिसको कराया था ना, सात दिन कोर्स कराने के बाद बाबा को मिलाते थे जब पहचान देके कि इतनी बड़ी हस्ती स्वयं भगवान वो आया हुआ है, आज तुझे मिलाएंगे। 7 दिन के बाद फिर मिलन करा, तो ऑफिस में उसको बिठाया और फिर गई, फिर बाबा के पास जाके, बाबा वो आज वीआईपी का कोर्स पूरा हो गया, आज आपको मिलना है। उसको बड़ी भावना में बिठाई है, भगवान आया है तो आप चलो बाबा, बच्चे को यहीं ले आओ। बाबा उसको मैं कहा भगवान, सारी धरती का मालिक, त्रिलोकी नाथ, त्रिकाल दर्शी, कितनी मैं उसको महिमा करके भावना, वो कहेगा ये क्या को सब्जियां काट रहा है, ये क्या कर रहा है भगवान इनका। तो बाबा बाबा आप एक बार चल पड़ो ना, बच्ची यहीं ले आओ। फिर मुझे, फिर बाबा कहे मम्मा देख बच्ची को दे बहाना आ रहा है। तो बाबा के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी ना करने की, बच्ची यहां ले आओ। तो फिर वो लाई आखिर थोड़ा बुझे से मन में, चल भाई अब बाबा को क्या कहना। जैसे वो आया, बाबा जो भी कर रहा था काम करते करते, बाबा ने ऐसे दृष्टि दे के कहा आओ बच्चे, कहते ही वो तो ध्यान में चला गया, साक्षात्कार हो गया, उड़ गया एकदम। ये थी, आप सोचो बाप समान स्थिति, टॉपिक कहना तो बड़ा आसान है पर हमारी दृष्टि में इतनी पावर आ जाए कितनी बड़ी बात है। सेकंड में दृष्टि ऐसे कहीं चलते चलते पकड़ लेते, कहते एक मिनट दृष्टि तो देना। बाबा की दृष्टि कैसी होती थी, एकदम उड़ा देती थी। ऐसी हम अपनी नैनों में रूहानी ताकत इतनी भर जाए, जब आप उस उच्च स्थिति पे होंगे तभी तो भर पाएंगे, तब आपकी स्थिति से भी कईयों को सचमुच, जो ऐसा नहीं है कि बच्चों के द्वारा नहीं होता साक्षात्कार, होता है कईयों को, जिसे बाबा ने कहा साक्षात्कार मूर्त बनो। भट्टी कराते हुए कई बार होता है, कभी और भी कई स्थानों बाबा पर, स्थिति पर, स्थिति आपकी टॉप की है तो बाबा आपके द्वारा भी विचित्र कार्य कराता रहेगा। एक बार यहां महामंडलेश्वर आए हुए थे, जयंती बहन क्लास करा रही थी, सुबह मुरली में मैं उनको ले आया, तो मुरली के बाद वो नाश्ते पे कहते जी, वो आई थी उस वक्त ज्ञान सरोवर ज्यादा रहते थे, तो विदेशियों का टर्न होता था, दादी जान के भी ऊपर सारा पाल, तो जयंती बहन ऊपर चली गई ज्ञान सरोवर। वो नाश्ते पे कहते हैं कि जो दीदी आज सुबह सुना रही थी मुरली, हमें लगातार ऐसे लगा मुख से गुलाब के पुष्प लगातार बरस रहे हैं, लगातार बरस रहे हैं, हम तो धन्य धन्य हो गए आज। फिर कहा जी एक बार उनसे सन्मुख मिला दोगे। एक बार फिर मैंने जयंती बहन को फोन किया, मैं कहा दीदी दो महामंडलेश्वरों को आज मुरली से ऐसा बाबा ने आपके थ्रू दिव्य साक्षात्कार कराया है, वो तो कहते धन्य हो गए, जिंदगी में पहली बार, अरे लाखों को मिले हैं, कितनी हस्तियां देखी हैं, नो कंपेरिजन। तो आपसे फिर दिया टाइम लेके गया, बड़े खुश हो गए। तो बाबा ये कार्य कर रहा है ना इस वक्त। हाँ बाबा कहते कन्याओं के द्वारा बड़े बड़े भीष्म पितामहों को बाण मारे, तो प्रैक्टिकल में बाण लग रहे हैं ना। हाँ हमारी शिवानी बहन देखो कैसे निमित्त बनी हुई है। हाँ बाकी जगह तो भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है, उसके लिए भीड़ नहीं इकट्ठी करनी पड़ती, उसके लिए भीड़ कंट्रोल करनी पड़ती। हाँ पहले टाइम से बिफोर सारी कुर्सियां भर जाती हैं। तो कमाल किसकी है, बाबा की है। बाबा ने प्रत्यक्षता करना है ना, कन्याओं को निमित्त बना के बाबा बड़े बड़े भीष्म पितामहों को बाण लगा रहा है, वो टाइम आ गया ना वही। तो बाबा की सादगी ये बहुत जबरदस्त थी। फिर बाबा की विशेषता जिसमें बाप समान बनना है, निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी। आज भी था, बच्चे देखो बाबा कितना निरहंकारी है, कहते मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं, तुम बच्चों को भी बाप समान निरहंकारी बनना है। तो बाबा की निरहंकारिता कमाल की थी। देखो हेड होते हुए भी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पहली मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा, एक भी साइन बाबा ने नहीं किए, उन्होंने ही किए। आज भी संस्था का परिचय में हम ये कहते हैं हमारी प्रथम मुख्य प्रशासिका दादी मातेश्वरी जगदम्बा थी। बाबा बैकबोन था, पिताश्री ब्रह्मा थे हमारे फाउंडिंग फादर, लेकिन प्रैक्टिकल प्रशासन के लिए, आजकल तो बड़े बड़े लोग किसी और गुरु दूसरे किसी को बराबर आने ही नहीं देते कि कहीं ये भी मेरे बराबर, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर बाबा ने सब दादियों को वरिष्ठ जनों को कितना ऊपर पहुंचाया और कितना बाबा बच्चियों को आगे बढ़ाते थे। एक बार माउंट आबू में कुछ पोस्टर ऐसे लगाए, तो कुछ महात्माओं का झुंड बहुत विपरीत हो गया, आए पांडव भवन में डिस्कशन करने, तो डिस्कशन खूब किया और जो सामने थे बहन वो इतना नहीं कर पाए। बाबा ने पूना में थी प्रेम बहन जी को बुलाया, प्रेम बच्ची को बुलाओ, प्रेम एक दिन वेट किया, एक दिन में फटाफट ट्रेन पकड़ के पहुंची। हम जब तक संतुष्ट नहीं करोगे, हम शास्त्रार्थ करेंगे और रोज आएंगे, तो इतना वो। तो दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन जब प्रेम बहन पहुंची, बाबा ने कहा बच्ची ये ग्रुप आ रहा है और बड़ा ग्रुप है 15-20, इसको बच्ची तो बाबा ये बड़े बड़े प्रेम भी प्रेम दीदी भी उस वक्त यंग ही थी, कोई 20-25 वर्ष की होगी, ये इतने बड़े बड़े विद्वान, मैं इनको कह बच्ची तेरे द्वारा बड़े बड़े महामंडलेश्वरों का कल्याण होना है। ये बाबा ने प्रेम बहन को वरदान दिया। प्रेम बहन सुनाती, बाबा ने कहा तो क्या चिंता थी, गई, अरे जब सुनाया तो इतने कायल हो गए, बस बाबा ने उनका जैसे उद्धार करना था। तो लास्ट में कहते हैं दीदी आप अब तक कहां गए थे, दो दिन हम आते रहे, दो तीन अब तक गए कहां थे। फिर लगातार उनको 7 दिन कोर्स कराया। तो बाबा के पास समाचार पहुंच गया, जब सुना के गई बाबा के पास, तो बाबा ने कहा बहुत शुक्रिया किया। बाबा ने कहा बच्ची बाबा ने कहा था ना तेरे द्वारा बड़े बड़े महामंडलेश्वरों का कल्याण होना। मैं कभी कभी सोचता हूं भगवान ब्रह्मा के तन में, और ब्रह्मा बाबा स्वयं भी सो सक्षम सृष्टि की नंबर वन आत्मा, अगर वो चाहता उनके सामने बैठ के, बाबा तो कुछ भी शिव बाबा किसकी बुद्धि घुमा दे उनको साक्षात्कार करा सकता था, कर सकता था। पर ये देखो बाबा का एक सम्मान देने का तरीका, प्रेम बच्ची आएगी वो समझाएगी, प्रेम बच्ची आएगी वो समझाएगी, दो दिन वेट किया और उसके द्वारा जो है सचमुच कल्याण हुआ और उनको रिलीजियस विंग का चेयरपर्सन संस्था में बनाया था। सारे हरिद्वार के महामंडलेश्वर क्या सब जो है वह उनका उद्धार सचमुच प्रेम बहन जी ने किया, सबने जो वरदान दिया था बाबा ने, देख के वो हैरान होते थे कि प्रेमो दीदी ओहो धन, ये तो हमारे लिए यही भगवान है। किस किस ने देखा हमारी प्रेम दीदी जी को, हाथ खड़ा करो। नहीं बच्चों ने नहीं देखा होगा, अभी बस कुछ वर्ष पहले ही गए हैं, लेकिन बाबा की विशेष वरदानी आत्मा थी। तो ये था बाबा का, हाँ, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी निर्विकारी। अरे कितनी संपूर्ण पवित्रता बाबा की, जिसमें हमें बाप समान बनना है, ये प्योरिटी की स्टेज, इतनी हाई स्टेज होना, क्योंकि हम करनाल से ज्ञान लिया, वहां पे कितनी माताएं कितने थे भाई पुराने साकार बाबा की पालना लिए हुए, और हमें वो अनुभव सुनाते थे ना जब, तो हम भाव विभोर हो जाते थे। आज तक किसी का अनुभव हमने नहीं कि बाबा की गोदी लेते थे, बहने हो चाहे भाई हो, बाबा को टच होते ही एकदम जैसे कोई करंट लगता हो 10,000 वाट का, एकदम देह से डिटैच हो जाते थे। उनकी जिंदगी के सबसे सुंदरतम पल वो थे। खुद जगदीश भाई सुनाते हैं कि जब बाबा की गोद में, वो मैं जिंदगी का अनुभव कभी भूल नहीं पाऊंगा, जैसे कोई सागर में समा गई हो नदिया। तो आप सोचिए ये बाबा का कितना बड़ा वो था, इतना उनमें ऐसी स्थिति थी बाबा की, इतना सुंदर अनुभव करा देना। तो ये थी, फिर बाप समान स्थिति बनानी है, अंगत समान अचल अडोल, मतलब कि कितने भी कुछ किसी प्रकार की बातें आई, अपोजिशन हुआ, क्या क्या हुआ, बाबा को कभी भी जरा भी चेहरे पे वो नहीं देखा कि आज बाबा का चेहरा थोड़ा बदला हुआ है या कुछ घबराहट में है, नेवर। ये थी बाबा की अंगत समान अचल अडोल स्थिति। कैसा भी कुछ हुआ, कहीं उन्हें पिक्चर खींच के, अरे ये तो देखो बहनों को भी गोद में बिठाता है, अरे बाबा ने परवाह नहीं की कभी भी, भाई इनका अधिकार है, शिव बाबा मेरे तन में आता है, बाप की गोद लेना बच्चों का अधिकार है, तो जो स्थिति है, कहीं इस सीआईडी के लिए आए वो भी बाबा के बच्चे बन गए, पक्के बच्चे बन गए। अनुभव किया, खुद देखा, रे ये तो कमाल है, वंडरफुल अनुभव होता है। तो बाबा ने कभी परवाह नहीं की। हर गोविंदपुर में दादी चंद्रमणि रहती थी, एक गांव है पंजाब में अमृतसर के पास, 3 साल दादी वहां रही, बाबा ने भेजा था, और वहीं से अचल बहन जी अभी बनारस में, सुरेंद्र दीदी वो भी वहीं से निकली, कृष्णा बहन अम्बाला वहां से निकली, बठिंडा की कमलेश दीदी वहां से निकली, जनक बहन जी, सुन बहुत बहने बहुत। तो बाबा जब वहां गया तो वहां पंजाब का गांव था, तो बाबा देखा इतनी कुमारियां, वाह। बाबा बहुत क्लास कराया वो तो था सब। बाबा ने हंसी में कहा, बच्ची बाबा हर गोविंदपुर से कुमारियों का गाड़ा भर के ले जाएगा। गाड़ा होता है ना, बैलगाड़ी, उसको। ये बात किसी अज्ञानी ने सुन ली और सारे गांव में फैल गया, भाई इनका गुरु आया है, कहते है सारी लड़कियों को गाड़े में भर के ले जाता। इतनी बात फैल गई, इतना वो हो गया। जैसे को हंगामा सा, बाबा को बताया, बाबा परवाह नहीं किया, हाँ बच्ची बाबा भर के ले जाएगा गाड़ा, बाबा ले जाएगा यहां से। बाबा तो हंसी में कहा, लेकिन सचमुच वहां से गाड़ा भर के ही आया। आज सुरेंद्र दीदी के अंडर 400 सेंटर थे, अभी संपूर्ण हुई हैं, 5000 वहां भाई बहन आए हुए थे उनके भोग पे। अचल बहन जी पंजाब जोन के इंचार्ज, उधर देखो राज बहन जी नेपाल की, ईस्टर्न नेपाल की, वो जिन्होंने, जिनकी आज शाम को क्लास भी है सुनना। तो कितनी दीदियां बाबा वहां से, उस स्थान से, वहां से कितने निकले, बठिंडा वाली दीदी और सब दीदियां, बाबा के मुख से जो निकला एकदम 100% वही हुआ है, 100% वही हुआ। तो अंगत समान अचल अडोल स्थिति थी। शुरू शुरू में कराची में लोगों को पता नहीं था इतना है, हैदराबाद सिंध में जब शुरू हुआ तो इसलिए शुरू में अपोजिशन भले कितना हुआ, पर बाबा की स्थिति, सच तो बिठो नच, बिल्कुल नहीं परवाह, जरा नहीं पर, थोड़ा बुद्धि व्यर्थ संकल्प चल पड़े ना, ये कमाल थी। एक बार वहां पार्लियामेंट का घेराव कर दिया, 5000 लोग लेके, साधु किसी ने, उसने किसी ने, सारे इंस्टीट्यूशन चाहे हिंदू इंस्टीट्यूशन विरुद्ध हो गए थे, और सब घेराव कर लिया, ओम मंडली बैन करो, ओम मंडली बैन, कितना हंगामा चलता रहा। और देखो बाबा किसी को भी मददगार बनाता है, वहां चीफ मिनिस्टर था अल्लाह बख्श, वो उसको, बहनों को देखता था ना, दादियों को, उसको फरिश्ते का साक्षात्कार होता, वो कहते ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये गलत क्या कर रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते। इतना पोजीशन हुआ, जब बहुत सब तुली गए तो उन्होंने कुछ दादियों को बुला के कहा, मैं आपको एक युक्ति बताता हूं, क्या मैं ऑर्डर निकाल रहा हूं ओम मंडली बैन, लेकिन कानून ये कहता है, ओम मंडली के तो आप बोर्ड हटा देना, कानून ये कहता है कि कोई भी अपनी और कोई सोसाइटी और कोई और किसी नाम से आप और बना लो संस्था। उन्होंने कहा ठीक है, ओम मंडली बैन के सब पेपर में निकल आया सर। अरे इतनी खुशियां मनाई, भंगड़े पहने के, वाह भाई वाह, ओम मंडली बैन, ओम मंडली बैन, ओम मंडली। फिर शिव बाबा से कार्य तो चल ही रहा था, नाम पूछ के फिर रखा गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। जब विरोधियों ने देखा, अरे 2-3 महीने 4, जिसका असली नाम खत्म हो जाए ना तो मेंटली भी डिस्करेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन ये तो उसी उत्साह से अब भी चल रहे हैं, नया नाम रख के। फिर गए उसके पास चीफ ने, कहते भाई मैं अब ये भी बंद करा लो, ये तीसरा रख लेंगे, फिर चौथा रख लेंगे। फिर आखिर वो बैठ गए हाथ पे हाथ रख के, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सारे विश्व में पहुंच गए। तो बाबा कभी हिला नहीं जरा भी, कितनी ऊंचे ऊंचे पेपर क्या क्या आते थे, बाबा हिल जाए ना।
ये हो गया वो हो गया बाबा ये इतना बिल्कुल नहीं, परवाह नहीं बिल्कुल, स्थिति इतनी ऊंची जो बात ना पूछो। तो ऐसे बाप समान बाप के चरित्र याद करने से हम भी अपने को तभी भेंट कर पाएंगे ना हम कितनी ऊंची स्थिति है। दिल्ली में बाबा मेजर कोठी में आए हुए थे तो वहां वो जो मुख्य था मेजर, उसके पत्नी और वो रिश्तेदार, वो साउथ में, वो शायद वो इतने नहीं थे मतलब बाबा के निश्चय बुद्धि, और वो बाबा की गोद में ही शरीर छोड़ गया ना। तो फिर क्या हुआ, सबने कहा बाबा चले जाओ वो आएंगे रिश्तेदार, पता नहीं क्या क्या बोले। बाबा गया नहीं, अरे नहीं बच्चे बाबा, और जब आए भले कहा भगवान था तो ये, पर बाबा ने दृष्टि दी बच्चे ये ड्रामा था, बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल शांत ड्रामा था। उसका भाग्य था वो तो बाबा की गोद में जो गई आत्मा वो तो खुद भाग्यशाली आत्मा थी। तो मतलब ये है कि परिस्थिति देखने वाली बात है, अचल अडोल स्थिति किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, हिला नहीं बाबा, घबराया नहीं, परिस्थितियों में कहीं भी भागा नहीं, परिस्थितियां भाग गई बाबा नहीं गया, ये था बाबा का कमाल। तो ऐसे ही हमें भी अचल अडोल स्थिति बनानी है, इतनी ऊंची स्थिति बाबा के एक एक चरित्र को सामने रख के ऐसी ऊंची स्थिति बनाएंगे तभी हम बाप समान बन पाएंगे ना। सब कुछ बाबा के ऊपर बाबा ने जैसे अर्पण किया, हम भी ऐसे ही समर्पण होके चले, प्रतिपल बाबा को समर्पण होके चले। साथ साथ बाबा ने भोजन बाबा करते थे तो एकदम बाबा की याद में लगता था जैसे कोई शिव साजन के साथ सजनी भोजन कर रही है विदेही होके। तो ये कितना ऊंचा बाबा का एक पुरुषार्थ था, पल पल बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया जो हमें प्रेरित करता है बाप समान स्थिति बनाने के लिए। हमें भी ऐसा ही पुरुषार्थ करना है, ये एक लक्ष्य रखना है, इसलिए उसके लिए हम प्रयास करें जितना भी हो सके। जैसे बाबा अव्यभिचारी याद, अटूट याद, फिर भी निरंकारी होके कहते देखो बच्चे मैं भी भूल जाता हूं, कहीं बच्चे चार्ट लिखते हैं बाबा हमें तो बिल्कुल याद, हर वक्त याद है, याद हो तो हर वक्त संपूर्ण न बन जाए। बाबा ने एक बार कहा एक दिन भी बच्चे कोई सारा दिन याद निरंतर रह जाए, हो सकता है कि कर्मातीत बन जाए। तो मैंने एक दिन सोचा कि ये तो बढ़िया तरीका है रोज रोज करने, एक दिन पूरा जोर लगा के बिल्कुल टिच बाबा के पास रहेंगे, टंटा खत्म, कर्मातीत हो जाएंगे। तो मेरे को धुन सवार हुई, ये मॉडल टाउन सेंटर की बात है, उस वक्त मैंने आदरणीय सरला बहन जी को कहा बहन जी कल मैंने 16 घंटा तपस्या में बैठना है, सुबह 4 से रात्रि 8 बजे तक। तो कहते कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, मैं करना मेरा कोई विचार नहीं है, हाँ आप भले ऑफर करना हट भी नहीं है, पर मैं बिल्कुल विदेही होके बैठना है बाप समान। शायद उन्होंने बीच बीच में ऑफर भी किया, लेकिन मेरे को एक सीन ऐसी देखी हुई थी, एक बार ओम शांति भवन में गुलजार दादी के तन में बाप दादा आए, शाम को 6 बजे आए और अगले दिन सुबह 10 बजे बाबा गए, और वही पावर उसी स्थिति में वैसे ही बाबा मिल रहे हो। लास्ट पार्टी का 9 बजे नंबर आया था, आप में से भी शायद किसी ने वो सीन देखा होगा, है कोई भाग्यशाली है, खड़े हो ना अपने स्थान पे जिसने वो सीन ओम शांति भवन का देखा है। 1 2 3 4 5 4-5 हैं, गुड, इनके लिए ताली बजाओ। तो मैं देखा जो लास्ट पार्टी का आया था ना, 9 बजे नंबर आया, उस वक्त हर ग्रुप को बाबा पहले दृष्टि देना, फिर वरदान देना, फिर पावरफुल, फिर एक एक बच्चे के मुंह में टोली तक मिलती थी इतना। तो उस ग्रुप का 909 नंबर आया, बाबा ने कहा अच्छा सारी रात इंतजार किए, इनको सबसे अधिक मिलना चाहिए। मतलब सारी रात इंतजार की, इनको सबसे अधिक मिलना चाहिए। बाबा ने कहा, मतलब अक्सर होता है कि बहुत थक गए, बहुत हो गया, फटाफट निपटाओ 5 मिनट में। लास्ट ग्रुप को बाबा ने सबसे ज्यादा टाइम दिया था, आधा पौना और 10 बजे बाबा की फिर विदाई हुई थी। तो मेरे को था, अच्छा बाबा एक बार भी रथ ने आलथी पालथी नहीं पटकी, कुछ ये नहीं ठहरो भाई मैं वॉशरूम हुआऊं या कुछ और, नथिंग। तो मेरे को नशा चढ़ा, मैं कहा भाई एक बार तो हम भी पूर्ण विदेही होके देखते हैं, विदेही बिल्कुल। तो उस दिन फर्स्ट टाइम मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्कुल मैं विदेही पक्का सोचा हुआ था। तो जब विदेही, देह याद ही नहीं करनी, विदेही है फिर आपको क्या भूख लगेगी, क्या प्यास। मैं सच कहता हूं विदेही स्थिति बहुत ऊंची है, और सच बात है उस दिन 16 घंटे में मुझे एक बार इच्छा नहीं हुई कि मैं कुछ जल पी लूं या कुछ और, शरीर तो था ही नहीं ना, या कुछ और जाऊं कहीं फ्रेश हुआऊं ना, बिल्कुल नहीं। ये नहीं कि हट से, वैसे ही नहीं था। पूरा 16 घंटा टिच बाबा के साथ बैठे रहे, आनंद आ गया। परंतु मैंने तो योग किया था, मैं कहा टंटा खत्म, आज कर्मातीत तो हो ही जाना है। मुरली में एक दिन पहले आया था, एक दिन भी कोई ऐसा रह जाए तो कर्मातीत हो जाएगा। मैं कह लिया बस आज टंटा खत्म करेंगे, कर्मातीत हो जाएगा। पर मैं फिर भी नहीं हुए, क्या कारण? कारण ये जो स्टेज है बीज रूप वाली, उसमें कंटिन्यूस स्थित रहना, वो उस स्थिति में तो सचमुच कर्मातीत हो जाएंगे आप। नहीं तो आप कर्मातीत जैसे अनुभव बड़े सुंदर सुंदर करेंगे। मैं समझता हूं उसका मुझे ये फायदा हुआ, इतने सुंदर अनुभव हुए, मैंने जिंदगी का लक्ष्य ले लिया कि मैं ऐसे फिर करता रहूंगा। फिर मैंने हर 3 महीने में किया, और कोविड पीरियड में तो मैंने प्रोजेक्ट एक बनाया 16 सप्ताह, 16 क्लास संपूर्ण बनाने के लिए 16 घंटे की भट्टी। तो हम हर शनिवार सुबह 4 बजे बैठते थे और शाम के 6 बजे वो 8 बजे निकलते थे। और इतना मैं, कहीं पूछते हैं विच इज योर हैप्पीएस्ट डे ऑफ द लाइफ, मैं अपनी जिंदगी के सबसे हैप्पीएस्ट डे उन 16 घंटे की भट्टी को कहता हूं कि उस वक्त कितने सुंदर करंट बाबा का मिल रहा होता है। तो शौक पड़ गया और इतना सुंदर अनुभव लगता है। कितनी सेवाओं की जिम्मेवारी है, सब कुछ है, पर मैं कैसे भी करके टाइम निकालता जरूर हूं। अभी भी मैंने 9 दिसंबर को किया, उसके बाद फिर जनवरी में, फिर कभी एक बार जरूर महीने में डुबकी लगानी और खूब तपस्या करनी, तो मजा आ जाता है उसमें। तो ये है, बाप समान बनना है तो बाबा हमें फिर भी कुछ देर बैठ के करना पड़ता है ना। मैं आपसे भी यही संकल्प चाहूंगा, कम से कम 3-3.5 घंटा तो रोज, हाँ आप सब स्पेशल बैठ के योग जरूर करें। हाँ 3 घंटा क्या होता है, 3:30 से 5 सुबह बैठो, 1.5 घंटा, 1 घंटा नुमा शाम बैठो, आधा घंटा मुरली से पहले बैठेंगे ना, कुछ तो संकल्प यहां से करके जाएंगे ना। जो कहते हैं पक्का डेली कम से कम इतना बैठेंगे, दोनों हाथ खड़े करो, गुड, वेरी गुड। ये बाबा ने आपका फोटो ले लिया है, ये डिलीट भी नहीं होगा, सबके लिए ताली बजाओ, गुड। तो तपस्या जीवन में परिवर्तन लाएगी, बहुत उच्च बना देगी। कोई भी बात आए तपस्या में बस खो जाओ, बहुत सुंदर शौक हो जाए मुझे तपस्वी बनना है। जिंदगी का लक्ष्य है सेवा, तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली निकलती रहेगी, तपस्या का लक्ष्य रखना है। तो जितना तप करेंगे उतना निखरते जाएंगे। और कभी कभी मैं कहूंगा लंबी तपस्या का भी आनंद लो। खुद मुझे दादी चंद्रमणि सुनाया एक बार, 21 दिन बाबा ने मुझे कहा 12 घंटा बच्ची बैठ के तपस्या करने, तो मैंने की। दादी जानकी ने सुनाया, चंद्रमणि दादी और मैं कितने घंटों अमृतसर में बैठ के तपस्या, पता ही नहीं लगता था इतना टाइम बीत गया। वो शक्ति कहती थी आज भी काम कर रही है, ये है तपस्या। हमारी दादियों ने कितनी तपस्या की। तो थोड़ा कभी कभी लंबी तपस्या भी, ये काम वो काम, ये काम वो काम, ये सेवा वो सेवा, सब कुछ हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट वाले कहते हैं टाइम इज नो इश्यू, इट इज ओनली द इश्यू ऑफ प्रायोरिटी मैनेजमेंट, जिस चीज को मनुष्य प्रायोरिटी देता है ना उसके लिए टाइम ही टाइम मिल जाता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। इन सब बातों पे पूरा ध्यान देंगे, कुछ संकल्प जाते हुए करके जाएं, पक्का वायदा, और जाके अपनी दीवार पे लगा दें मेरी इस वर्ष मधुबन यात्रा के दृढ़ संकल्प, और पूरा वर्ष अच्छी तरह निभाएं, तो आपके लिए ये बाप दादा मिलन वरदानी बन जाएगा, आप सचमुच बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, बहुत सुंदर हमें टिप्स दिए भाई जी ने कि कैसे हम अपने पुरुषार्थ को और ज्यादा बढ़ाकर बाप समान बन सकते हैं। पुनः आप सबकी तरफ से एक बार भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।
तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।